प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदलें।
श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने यूपीआई के 2400 करोड़ से अधिक लेनदेन हुए। भारतीय यूपीआई अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने यूपीआई को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिम क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि यह गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई है और राहत बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा को कटक में सरला साहित्य संसद की ओर से कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार में देवी सरस्वती की चांदी की मूर्ति और एक प्रशस्ति पत्र शामिल है। इस मौके पर न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा कि इंसान जिंदगी में भले ही कितनी भी दूर क्यों न चला जाए, लेकिन उसकी जन्मभूमि की मिट्टी ही उसकी यादों, पहचान और सांस्कृतिक विरासत को आकार देती है। एशियाई खेल 2026 के लिए भारतीय दल को नई दिल्ली से जापान के लिए रवाना किया गया। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा, खेल सचिव हरिरंजन राव और दल के प्रमुख सहदेव यादव के साथ मिलकर खिलाड़ियों और सहयोगी सदस्यों की मौजूदगी में भारतीय दल की आधिकारिक जर्सी का अनावरण किया। खेल मंत्री ने कहा कि 503 सदस्यों वाले दल में 300 से अधिक खिलाड़ी एशियाई खेलों में पहली बार भाग ले रहे हैं। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह और विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं महिला रिकर्व टीम में भारत भावना और पूजा ने रजत पदक जीता। उधर स्वाति चौधरी और आदिल मोहम्मद नजीर अंसारी ने मिक्स्ड टीम स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। स्वाति ने व्यक्तिगत W1 स्पर्धा में कांस्य पदक भी जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।